Hi, this is Vikas Dubey, BA Part 2 from Faculty of Social Science. Samaj Shastra Prashn Patra Sankhya 4 Bharatiya Samaj Ki Gatyatmakta Shirshak Hai Kshetravad Kisi Sanghiya Rashtra Ka Nirman Tab Tak Nahi Ho Sakta Jab Tak Uske Vividh Kshetron Tatha Up Kshetron Ke Beech Samanvay Sansleshan Va Samanjasya Na Ho Shahar, Gaon Aur Kasbe Kisi Bhi Rashtra Ka Nirman Nahi Kar Sakte Rashtra To Tab पुष्पित एवं पल्लवित होता है जब उसके विविध क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों का स्वर एक हो, भाव एक हो तथा स्वभाव अपनी उच्चतम सतह पर एक हो। लेखक। अति प्राचीन काल से भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक बहुक्षेत्रीय समाज रहा है। सभी क्षेत्रों में उपक्षेत्रों का अपना भिन्न भिन्न व्यवहार और लक्षण है, जिनसे उनकी अपनी विशेषता का पता चलता है। किंतु अचरज की बात यह है कि ये विविधताएं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक नहीं बनती। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, यहाँ की राष्ट्रीय एकता तो विविधता के बीच ही जन्म लेती, फूलती और फलती रही है। भारत पाक युद्ध की डायरी में नवभारत टाइम्स के तत्कालीन प्रधान संपादक श्री अक्षय कुमार जैन ने इसी ओर इंगित करते हुए लिखा है कि अनेकता में एकता इस प्रकार बैठी है जैसे शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों के होते हुए भी रीढ़ की हड्डी में चलता हुआ स्नायुमंडल। अतः यह धारणा कि राष्ट्र व राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और क्षेत्र की एकता आवश्यक है, भ्रमपूर्ण और असत्यपूर्ण है। वस्तुतः विकास का मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि एकता और विभिन्नता की प्रक्रिया परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे की पूरक है, और इन दोनों के सह अस्तित्व पर ही मानव शरीर और राष्ट्रों का अस्तित्व निर्भर करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की व्याख्या करते हुए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता एक इससे राष्ट्रीय विश्वास, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय परंपरा तथा राष्ट्रीय भावना धराशाही हो जाती है। अतः एक वैज्ञानिक परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद तो यथार्थ में वह दर्शन है जो राष्ट्रीय हितों का कम, क्षेत्रीय हितों का अधिक मोहताज है। क्षेत्रवादी अपने क्षेत्रीय वैशिष्ट्यों पर जीवित रहते हैं, अपनी क्षेत्रीय वैचारिकी, क्षेत्रीय चरित्र से आवश्यक विचार ग्रहण करते हैं। वे आपस में इस प्रकार घुसे रहते हैं कि अपने क्षेत्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय संकट की अनिश्चित घड़ियों में राष्ट्रीय हितों की भी उपेक्षा कर सकते हैं। अपने क्षेत्र विशेष की किसी वैशिष्ट इकाई तथा विशेष भाषा, बोली, सामाजिक संरचना अर्थात समुदाय, जाति, प्रजाति, जनजाति समूह, जनांग की विशेषता, क्षेत्रफल की अखंडता, सांस्कृतिक प्रतिमान, अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, मनोवैज्ञानिक संरचना और समूह पहचान की अनुभूत सचेतना आदि के हितार्थ जंग छेड़ना, आंदोलन छेड़ना क्षेत्रवाद है। अन्य शब्दों में क्षेत्रीय संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना क्षेत्रवाद है। क्षेत्रीय हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर स्थान देना क्षेत्रवाद है। क्षेत्रीय क्षेत्रवाद जंग के कारण ही अखंडित भारत दो खंडों में विभाजित हुआ, भारत एवं पाकिस्तान। पंजाब के दो खंड हुए, हरियाणा और पंजाब। मुंबई का विभाजन दो भागों में, महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में हुआ, तथा बिहार का दो भागों में विभाजन हुआ, झारखंड एवं बिहार। उत्तर प्रदेश का खंडन दो भागों में, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के रूप में हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का विभाजन भी दो खंडों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रूप में हुआ। आजकल देश में ऐसी मांगें तेज हैं और इसके लिए समय समय पर आंदोलन भी हो रहे हैं। यदि हम उपयुक्त विवेचन का अनुशीलन करें तो हमें इसकी प्रकृति के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, क्षेत्रवादी विश्वास, विचार एवं दृष्टिकोण प्रादेशिक आचार विचार पर आश्रित होते हैं। दूसरा, क्षेत्रवादी विचारों में प्रादेशिक जीवन की भौतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का मूल स्रोत निहित होता है। तीसरा, क्षेत्रवादी विचार क्षेत्रीय जीवन को स्थिरता और स्थायित्व देते हैं। चौथा, क्षेत्रवादी विचार क्षेत्र विशेष के संवर्धन एवं विकास, उत्थान एवं प्रगति के संदर्भ में अद्भुत होते हैं। पांचवा, क्षेत्रवाद के अंतर्गत क्षेत्रीय अंध विवेकहीन भक्ति तथा क्षेत्रीय उच्चता का भाव अंतर्निहित रहता है। छठवां, क्षेत्रवाद में क्षेत्रीय हित को सर्वोपरि मानकर जंग या आंदोलन छेड़ा जाता है। इस आंदोलन में राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा भी की जाती है। सातवां, क्षेत्रवाद में क्षेत्रीय हित प्राथमिक होते हैं जबकि राष्ट्रीय हित द्वैतिक। आठवां, क्षेत्रीय संकीर्ण राजनीति की कोख में क्षेत्रवाद का जन्म होता है। नौवां, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक एवं विघटनकारी है। दसवां, क्षेत्रीय पक्षपात क्षेत्रवादी पंथ के पंथी की जागीर है, उस पथ पर चलना उसका धर्म है। ग्यारहवां, क्षेत्रवाद एक सनक या उमंग सी है जो अपने सिद्धांतों के प्रतिकूल झुकने से इनकार करता है। क्षेत्रवाद के कारण, कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म, वे कौन से कारण हैं जिनके चलते क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां पुष्पित एवं पल्लवित होती हैं। विचारणीय है, ये कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भौगोलिक कारण। क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों को विकसित करने एवं भौगोलिक कारणों का अद्वितीय भूमिका है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है। हिमालय का उत्तर पूर्वी सीमांत पर्वत, दूसरा गंगा का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिणी पठार, चौथा तटीय मैदान। इसमें सब प्रकार की विविधता है, कहीं ऊंचे पठार तो कहीं सपाट मैदान, कहीं शस्य श्यामल प्रदेश तो कहीं निर्जल मरुभूमि। इस देश में जलवायु की विविधता भी उल्लेखनीय है, नाना प्रकार की वनस्पति एवं जीव भी मिलते हैं। भौगोलिक पर्यावरण की प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारण ही उनके निवासियों की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन तथा भाषाओं में उन जातियों में विभिन्नताएँ मिलती हैं। इन विभिन्नताओं ने क्षेत्रवाद को पुष्पित एवं पल्लवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा, ऐतिहासिक कारण। इतिहास एक धारा है, यद्यपि लहरों की तरह घटनाओं का उतार चढ़ाव सामाजिक जीवन में भी होता रहता है, फिर भी ये घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न नहीं है। थीसिस, एंटीथीसिस एवं सिंथेसिस के उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए चक्रों की तरह तह में सामाजिक जीवन के विकास की यह धारा की खोज एवं विभिन्न राष्ट्रीय समुदायों की विशिष्टताओं के माध्यम से उस धारा के विभिन्न रूपों की पहचान के संदर्भ में लोग प्रयासरत रहते हैं। किसी देश का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास उस देश में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण जीवन का चित्रण करता है तथा समस्त जन समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। सभी प्रदेशों का, सभी क्षेत्रों का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का एक सा नहीं होता, विभिन्न भिन्न होता है। विविधतापूर्ण एक ही देश में रहने वाले विभिन्न समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक जीवन भी एक प्रकार के नहीं होते, वे भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार, इस दृष्टि से हमारे देश का सामाजिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक राजनीतिक जीवन अत्यंत वैविध्यपूर्ण है तथा उसकी सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएँ सतत प्रवाहशील हैं। क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की ऐतिहासिक परंपरा को उसकी जीवंतता की विद्यमानता के संदर्भ में क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों का स्वभावतः विकास होता है कि वह पवित्र भावना है जो क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति, संस्कृति, सभ्यता आदि की भिन्नता होते हुए भी उन्हें एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्र को संगठित और सुदृढ़ बनाती है। भारतीय समाज कोई एक दिन का पौधा नहीं है, या तो जंगल की उस वृक्ष के समान है जिसके साथ शताब्दियों के उत्कर्ष, चुनौती, विरोध, प्रतिरोध और परिवर्तन की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। शताब्दियों से प्रभावित विचारधारा का स्वरूप, दिशा और गति एक सी नहीं रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में राष्ट्रीय एकता का जो स्वरूप विकसित हुआ और जिन तत्वों ने उसका पोषण किया, स्वतंत्रता की बात ने वे सब तत्व रहे और ना एकता का वह स्वरूप ही। स्वतंत्र भारत में नए संविधान के लागू होने के साथ ही नवीन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के विकास की धारा को एक नई दिशा, नई नीति और नया स्वरूप प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व भारत लगभग 600 देशी राज्यों में विभाजित था। ये स्वतंत्र राज्य सदैव आपस में लड़ते रहते थे। इनकी आपसी फूट के कारण ही विदेशियों के भारत में प्रवेश मिला और देश पराधीन हुआ। स्वतंत्रता के बाद पहली बार इन देशी राज्यों को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। इस प्रकार देश में राजनीतिक एकता और क्षेत्रीय अखंडता स्थापित हुई। अब पूरा देश एक ही संघीय शासन के अधीनस्थ है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था विश्व की सर्वाधिक वैध और प्रामाणिक जटिल संघीय व्यवस्था है। मानव इतिहास में विश्व के किसी भाग में अब तक इतना जटिल एवं विशाल शासन व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ता है। अतः भारत जैसे विशाल विस्तृत देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि से जुड़ी भावनाओं का प्रस्फुटन अनिवार्य है, क्योंकि जनतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दृष्टि से देखने पर स्वस्थ क्षेत्रीय विकास के प्रश्न के संदर्भ में क्षेत्रीय भावनाओं और मांगों की अभिव्यक्ति को विघटनकारी नहीं माना जा सकता। स्मरणीय है कि भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में एकता का तात्पर्य ना तो समरूपता और ना ही एकीकरण का अभिप्राय केंद्रीयकरण है। राष्ट्रीय पहचान की पूर्व शर्त के रूप में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का सम्यक विकास अनिवार्य है। हाँ, किंतु क्षेत्रीय गतिविधियां एवं राष्ट्रीय गतिविधियों के बीच समन्वय, संश्लेषण और सामंजस्य की स्थिति में ही राष्ट्रीय एकता पुष्पित एवं पल्लवित होती है। फिर भी यह स्पष्ट है कि उग्र राष्ट्रीयता की भांति संकीर्ण क्षेत्रीय अंध विवेकहीन भक्ति राष्ट्रीय एकता के लिए घातक एवं विघटनकारी है। जब क्षेत्रीय संकीर्ण अंध विवेकहीन भक्ति के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ जाते हैं, आंदोलन छेड़ देते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं को राष्ट्रीय भावनाओं की अपेक्षा उच्चतर समझने लगते हैं, तब क्षेत्रवाद फनफनाने लगता है। ऐसी भावनाएं जितनी अधिक बढ़ती जाती हैं, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। इसे यदि इसे रोका नहीं जाता तो देश की खंडित होते देर नहीं लगती। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के मातहत है, अधीनस्थ है। परंतु जब क्षेत्रीय चरित्र राष्ट्रीयता के ऊपर हो जाता है, राष्ट्रीय वैचारिकी तथा राष्ट्रीय चरित्र की बाजार दर घट जाती है, क्षेत्रीय स्वार्थों क्षेत्रीय हितों की बाजार दर बढ़ जाती है और राष्ट्रीय स्वार्थों में क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं तथा क्षेत्रीय आदर्श मानकों और मूल्यों की विलक्षणता को बनाए रखने में, अपने सांस्कृतिक इतिहास की विलक्षणता को बनाए रखने में अधिक बल देने लगते हैं तथा राष्ट्रीय विशेषताओं राष्ट्रीय आदर्श मानकों और मूल्यों तथा राष्ट्रीय इतिहास की विलक्षणताओं को गौर समझने लगते हैं, क्षेत्रवाद बढ़ने पनपने लगता है। तीसरा, राजनीतिक कारण। संप्रति क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों के विकास के कारणों में राजनीतिक कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लोगों में क्षेत्रीय भावनाओं को जागृत कर अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने में कामयाब होते हैं। कहना ना होगा कि भारत में क्षेत्रीय दल व्यवस्था राजनीतिज्ञों की एक चतुर्व्यूहति है। राजनीतिज्ञ अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए क्षेत्रवादी दल व्यवस्था का निर्माण करने में, क्षेत्र और जाति के नाम पर जनता को राष्ट्रीय धारा से अलग करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। ये राजनीतिक दल केवल जनसामान्य को केवल चुनावी राजनीति में भाग लेने या विधायिका में विजयी बनाने के लिए संगठित नहीं करते, बल्कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्यों जैसे क्षेत्रीय निर्माण, क्षेत्रीय नागरिक निर्माण तथा क्षेत्रीय पहचान के निर्माण कार्यों के लिए क्षेत्रीय नागरिकों को जागरूक और प्रोत्साहित करते हैं। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञों ने क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों के विकास में महान योगदान दिया है। और यह भी सच है कि आधुनिक संकीर्ण मनोवृत्ति वाले राजनेताओं के प्रयासों से ही क्षेत्रीय आधार पर नए नए समाजों राज्यों का सृजन हुआ है। भारत में क्षेत्रीय दलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, असंतुष्ट राजनेताओं द्वारा गठित क्षेत्रीय दल। दूसरा, जाति भाषा और संस्कृति के आधार पर गठित क्षेत्रीय दल। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रीय दल। पहला, असंतुष्ट राजनेताओं द्वारा गठित क्षेत्रीय दल। शुरू से ही कांग्रेस के असंतुष्ट राजनेता कई तरह के क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते रहे हैं। इनमें से अधिकांश प्रकृतितः अल्पकालिक रहे और प्रायः वे राजनीतिक सत्ता ग्रहण करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों के उदाहरण बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, विशाख हरियाणा परिषद तथा तेलंगाना प्रजा समिति। दूसरा, जाति भाषा और संस्कृति के आधार पर गठित क्षेत्रीय दल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम जैसे राज्यों का वृहत संगठन जाति भाषा और संस्कृति के आधार पर आधारित नजर आते हैं। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा असम जैसे राज्यों के वृहत संगठन, इन दलों का स्वरूप बहुत बड़ा तथा संगठन सुदृढ़ होता है। पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में नव चेतना का उदय हुआ। नवजागरण से सजातियों में नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त जातीयता पर आधारित वर्गीय चेतना भी विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप शिक्षितों, श्रेष्ठ पदों एवं सेवारत व्यक्तियों तथा समृद्ध ब्राह्मण तथा उपेक्षित शोषित एवं गैर ब्राह्मण जातियों के बीच वैर भाव को बढ़ावा मिला। इस पृष्ठभूमि में गैर ब्राह्मण आंदोलन का जन्म हुआ, जिसका आह्वान 1916 में गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र में किया गया था। सन 1917 में साउथ इंडियन पीपल्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो आगे चलकर कांग्रेस के प्रभाव का सामना करने के लिए जस्टिस पार्टी में परिवर्तित हो गई, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मण प्रधान माना जाता था। सन 1944 में जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के विलय हो जाने पर परियार के नेतृत्व में द्रविड़ कंगड़म का गठन हुआ, जिसने न केवल ब्राह्मणों के प्रति उग्रवादी रुख अपनाया बल्कि क्रोधपूर्ण भावावेश और विवेकहीनता में राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध किया। सन 1949 में सीएन अन्नादुरई ने संगठन के उत्साही युवा नेताओं तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं सहित 3/4 से अधिक सदस्यों के साथ दल छोड़कर द्रविड़ मुन्नेत कंगड़म के नाम से एक क्षेत्रीय संगठन बनाया। डीएमके ने तमिल पहचान बनाए रखने के क्रम को जारी रखा तथा ब्राह्मण विरोधी दृष्टि अपनाए रहा। डीएमके प्रणेता अन्नादुरई की सन 1967 में मृत्यु हो जाने के बाद अक्टूबर 1972 में दल का लंबवत विघटन हो गया और एक नया दल अन्ना डीएमके बाद में अखिल भारतीय अन्ना डीएमके के नाम से बना। तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद आदि राजनीतिक पार्टियां ऐसी ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तीसरा, राजनीतिक दल या जनजातीय दल। क्षेत्रीय दलों का दूसरा प्रकार जनजातीय दल है। इस प्रकार के दलों के निर्माण में केंद्र में अपनी जनजातीय राजनीतिक पहचान बनाने तथा केंद्र से अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होता है। ये क्षेत्रीय दल बहुधा अपने क्षेत्र की पृथकता एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी उठाते रहते हैं। ऐसे दल के उदाहरण कुछ उग्रवादी राष्ट्र संगठन हैं, जैसे नागा नेशनल काउंसिल, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। आगामी जापो फिजो के नेतृत्व में 1956 में नागा फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी। उसी प्रकार 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई, जिसने अपेक्षाकृत उदार व समझौतावादी मिजो यूनियन और 1948 में गठित मिजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन का स्थान ग्रहण किया। मिजो नेशनल फ्रंट ने अपने नेता लॉल डेंगा के नेतृत्व में 1966 में सशस्त्र विद्रोह किया और स्वतंत्रता की मांग की। गारो नेशनल काउंसिल मणिपुर पीपुल्स पार्टी, कुकी नेशनल असेंबली मणिपुर, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन जैसे जनजातीय संगठनों का गठन 1946 में ही हुआ तथा उन्होंने संवैधानिक ढंग से दबाव समूहों की तरह कार्य किया। आल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1966 में हुई और उसने एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग की। इसके सदस्यों में अनेक कांग्रेसी सदस्य भी थे। इसने 1963 में नागालैंड को और 1971 में मेघालय को राज्य का दर्जा दिलाने का रचनात्मक कार्य किया। इसके बाद क्षेत्रीय पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक राज्यों का निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिक्किम में सिक्किम कांग्रेस और सिक्किम शेड्यूल्ड कास्ट लीग इस श्रेणी के सक्रिय राजनीतिक दल हैं। बिहार में 5 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड पार्टी स्वतंत्रता पार्टी प्राप्ति के समय से ही सक्रिय है। अब इसने भारत राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य की स्थापना कर ली है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा लीग धीरे धीरे सुव्यवस्थित संगठन के रूप में विकसित हो गई। वहां इसे एक काउंसिल स्थापित करने के साथ ही गोरखा स्वायत्तता संबंधी मांग मनवाने के लिए एक प्रशासनिक मंच भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार क्षेत्रवादी भावनाएं के विकास में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा, सांस्कृतिक कारण। भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। यह मिस्र तथा मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन मानी गई है। प्राचीनता के साथ दूसरी विशेषता शाश्वतता है। चीन की संस्कृति अतिरिक्त पुरानी दुनिया की अन्य सभी संस्कृतियां मेसोपोटामिया, सीरिया, बेबिलोनिया, मिस्र एवं रोम काल के कराल गाल में समा चुकी है। कुछ अवशेष ही उनके गौरव गाथा गाने के लिए बचे हैं, किंतु भारत की सांस्कृतिक विरासत अनेकानेक राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भी शाश्वत है। इसका ज्ञान हमें इसी से होता है कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए हैं। किंतु भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं कि उनकी क्षेत्रीय संस्कृति जीवित रहे और वह अधिक उन्नत करे। यह तो अच्छी बात है, परंतु जब यह भावना घर कर जाती है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उनकी क्षेत्रीय संस्कृति को प्राथमिकता दी जाए तो यह घातक सिद्ध होता है। इससे क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। अक्सर क्षेत्रवादी संस्कृतियों के रख रखाव के संदर्भ में क्षेत्रवासी अन्य क्षेत्रों के विरुद्ध अपनी ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की जनभावना की आग को उगलते रहते हैं। पांचवा, भाषावाद। यदि हम यह कहें कि भाषावाद क्षेत्रवाद का बुनियादी आधार है तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। भाषावाद क्षेत्रवाद के गले का हार बन गया है। भाषा के ही आधार पर हमारे देश में क्षेत्रीय सीमा की लड़ाई की बात शुरू हुई, प्रदेशीय सीमा बदलने की बातें होने लगी, शोर संघर्ष होने लगा। अपने क्षेत्र या प्रदेश की भाषा में को उत्सर्गोत्कृष्ट भाषा मानना तथा अन्य क्षेत्रों या प्रदेशों की भाषाओं को हेत से की दृष्टि से देखना क्षेत्रवादी भावना को प्रोत्साहित करता है। क्षेत्र से भाषा का जो तोड़ हम लगा बैठे हैं इससे जोड़ बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय भावात्मकता राष्ट्र एकता के लिए। छठा, संप्रेषण के सहायक अभिकरण। क्षेत्रवादी भावनाओं के विकास में संप्रेषण के सहायक अभिकरण प्रेस, जनसंचार माध्यम, रेडियो, टीवी, सिनेमा, हित समूह तथा जनमंच आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनमत को बनाने, प्रभावित करने और प्रसारित करने में ये सबसे शक्तिशाली अभिकरण है। यद्यपि ये संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता आंदोलन, सुधार आंदोलन, उग्रवादी व क्रांतिकारी आंदोलनों में अग्रणी रहे हैं, किंतु इनका एक वर्ग नकारात्मकता और प्रतिक्रियावादी आंदोलन जैसे फाशीवाद, नाजीवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद तथा क्षेत्रवाद के पक्ष में भी अगुवाई करता रहा है। क्षेत्र के महान नेता किसी न किसी समाचार पत्र या प्रेस से जुड़े रहते हैं। उच्चारित शब्दों की अपेक्षा मुद्रित शब्द मानव चेतना को अधिक विश्वसनीय, प्रभावकारी तथा वैध व प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। समाचार पत्र अपने दैनिक समाचारों, तथ्यों और सूचनाओं के साथ साथ संपादकीय टिप्पणियों, विश्लेषणकर्ताओं, विशेषज्ञों, नेताओं और पाठकों के विचार जनमत निर्माण कार्य में प्रतिदिन के भोज्य पदार्थ की तरह होते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी नीतियों का झुकाव वैचारिक दृष्टिकोण तथा राजनीति के विभिन्न पक्षों के प्रति विशिष्ट रवैया भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वे समाचार पत्र जिनका क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति झुकाव अधिक होता है, क्षेत्रीय तथा क्षेत्रवाद के हितों का प्रतिनिधित्व अधिक करते हैं, वे अपने संपादकीय स्तंभ में क्षेत्रीय सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के कुछ पक्षों का समर्थन या विरोध करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम भी जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी और वीसी द्वारा क्षेत्रीय समाचार, सूचना, विचार, विज्ञापन व मनोरंजन के व्यापक संप्रेषण माध्यम बन चुके हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों की सूचना स्तर की वृद्धि, ज्ञान बोध का विस्तार और अनेक प्रकार के विचारों, दृष्टिकोणों को उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय जनमत की प्रस्तुति एवं निर्माण में प्रत्यक्षता अथवा परोक्षता महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह राजनीतिक दल, विचार मंच और हित समूह, ये तीनों क्षेत्रवादी जनमत के निर्माण में प्रत्यक्षता रुचि प्रदर्शित करते हैं और वास्तव में ये क्षेत्रीय मतों और नीतियों को स्पष्ट और निश्चित रूप देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे क्षेत्रीय विचारों के वाहक तथा क्षेत्रीय जनमत को संगठित करते हैं। क्षेत्रवाद के नकारात्मकता रूपी परिणाम। यदि क्षेत्रवाद के पक्षधर इसके सकारात्मक परिणामों की बात करते हैं, उनकी दृष्टि में क्षेत्रवाद राष्ट्रीय विकास का मेरुदंड है। इसके आधार पर ही क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय परंपराओं को बनाए रखा जा सकता है, किंतु क्षेत्रवाद को लेकर देश में समय समय पर जो विस्फोटक आंदोलन हुए हैं वे किसी से भी छिपे नहीं हुए हैं। क्षेत्रवादी आंदोलनों ने राष्ट्रीय भावात्मक एकता को जिस रूप से विध्वंस किया है, लोकतंत्र के बुनियादी आधारों को जिस रूप में धराशाही किया है, इसने जिस रूप में प्रदर्शन, विरोध, मारपीट, हिंसा, अग्निकांड, नरहत्या और नरसंहार किया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश के एक कोने में सुलगाई क्षेत्रवादी आग न केवल एक क्षेत्र, प्रदेश व राज्य को प्रभावित करती है, वरन आग की लपटें सारे देश को प्रभावित करती हैं, देश की अखंडता को खंडित करती है। संक्षेप में देश पर क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभाव को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, यह राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को विघटित करने वाला तत्व है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले अवयवों को विखंडित करने वाला तत्व है। दूसरा, एक क्षेत्र के विरुद्ध दूसरे क्षेत्र के लोगों को खड़ा करके एक विघटनकारी तत्व के रूप में क्षेत्रवाद ने क्षेत्रीय राजनीतिकरण को बढ़ावा बढ़ावा दिया है। तीसरा, इसने संकीर्ण क्षेत्रीय निष्ठाओं को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक निष्ठाओं व राष्ट्रीय निष्ठाओं को धराशाही किया है। चौथा, क्षेत्रवाद ने क्षेत्रीय भावनाओं व क्षेत्रीय हितों पर आधारित उग्रवादिता का निर्माण करके देश में तनाव, भय, संघर्ष और हिंसा का पर्यावरण उत्पन्न किया है। पाँचवा, इसने क्षेत्रीय दलीय राजनीति की नीति को प्रोत्साहित किया है। छठवां, क्षेत्रीय दलीय राजनीति और मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रभुत्व जमाने के लिए आपसी कला, संकीर्ण सौदेबाजी और छल कपट को बढ़ावा देने में एक स्वार्थ परक विकृत राजनीति को जन्म दिया है। सातवां, प्रभुता संपन्न जातियों और प्रभुता विहीन जातियों के बीच ईर्ष्या, द्वेष व घृणा का बीज बोकर क्षेत्रवादियों ने लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास को प्रदूषित किया है। आठवां, इसने क्षेत्रीय हित समूहों, राजनीतिक दलों व विचार मंचों का निर्माण कर क्षेत्रीयता पर आधारित क्षेत्रीय चेतना की अवधारणा को विकसित किया है। नौवां, भाषा, संस्कृति, परंपरा और सजातीयता, इतिहास बोध के आधार पर राजनीतिक दलों को गठित करने की एक नई राजनीतिक परंपरा को जन्म दिया है। इसके परिणाम स्वरूप प्राय राजनीतिक अस्थिरता और अर्थव्यवस्था बनी रहती है। क्षेत्रवाद के निवारण के उपाय। क्षेत्रवाद के राक्षसी व दानवी रूप से छुटकारा पाने के लिए कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय व भावात्मक एकता का संवर्धन एवं विकास। क्षेत्रवाद के निराकरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का संवर्धन एवं विकास। जब तक अखंडित भारत की विराट परिकल्पना का प्रादुर्भाव नहीं होगा, जब तक अयम निजह परोवेति गणा लघुचित शाम की संकीर्ण मनोभावना जो सस्ती लोकप्रियता का मूलाधार है को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक उस विषय विषम समस्या का निराकरण संभव नहीं। राष्ट्रीयता की नींव क्षेत्रीयता की संकीर्ण विचारधारा पर नहीं जम सकती। संपूर्ण राष्ट्र संपूर्ण देश के विकास के भावों का अनुकरण राष्ट्र की उज्ज्वलता कायम रखने का एकमात्र उत्तम महत्तम साधन है। सारे राष्ट्र के हित भाव में सभी राज्यों और प्रदेशों का हित भाव अलग अलग नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह फूल अपनी सुगंधि का आधा हिस्सा साथ में अटखेलियां करने वाली वायु से पाते हैं और आधा हिस्सा उस जमीन से जिसमें वे उगे हैं और रस खींच रहे हैं, प्रदेश अपना आधा हित भाव देश की कठोर और कठिन परिस्थितियों में से और आधा अपने भूभाग की संस्कृति शक्ति से प्राप्त करते हैं। राष्ट्रहित भावना को जब सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा, तभी क्षेत्रवाद की प्रतीकतावादी प्रवृत्ति कम हो सकेगी। दूसरा, राष्ट्रीयता का भाव भूमि का निर्माण। क्षेत्रवाद का खिलाफत करने के लिए लोगों में राष्ट्रीयता की पुनीत भावना को विकसित करना अनिवार्य है। राष्ट्र निर्माण में जन समुदाय की एकानुभूति को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा जा सकता है कि राष्ट्र की पदवी उस राज्य को उस समय तक प्राप्त नहीं होती जब तक राज्य के निवासियों में परस्पर एक होने की भावना नहीं पाई जाए। इस प्रकार राष्ट्र के निर्माण में भूमि उस भूमि में निरंतर निवास करती आ रही है, करती आ रही जनता, उसकी संस्कृति, सभ्यता, धर्म, भाषा, जाति, परंपराएं, इतिहास, प्रभुता, संपन्नता तथा सार्वभौम सत्ता, अर्थव्यवस्था इत्यादि तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। भूमि और जन के बीच बिखरे इन सभी तत्वों में समानता अथवा संगठन को और भी महत्वपूर्ण माना गया है। धर्म, वंश, भाषा इत्यादि के साथ ही राष्ट्र निर्माण इसकी रचना तथा विकास के आवश्यक घटकों का संगठित रूप से विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि इसके लिए एक निश्चित भूभाग, समान संस्कृति, समान इतिहास मुख्यता आवश्यक है। इन सब में एक होने की भावना आवश्यक समझी गई है, परंतु इस तरह की एकता व समानता वास्तव में सर्वत्र पाई नहीं जाती। यद्यपि मोटे तौर पर कोई भी जन समूह जाति, धर्म, भाषा, राजनीतिक निष्ठा, मातृभूमि आदि कतिपय तत्वों के आधार पर अपने आप को राष्ट्र मान सकता है, तथापि किसी निश्चित भूभाग में बसे जन समुदाय के अंतर्गत वंश, जाति, धर्मगत समानता अथवा समान भाषा का प्राप्त होना सर्वत्र संभव नहीं है। ऐसे राष्ट्र की कल्पना जिसमें इन सभी तत्वों का पूर्ण रूपेण समावेश हो, एक पुराण कथा ही मानी जा सकती है। भारत के साथ ही और भी कई राष्ट्र हैं जहां विविध धर्म, जाति, भाषा तथा रीति रिवाजों के बीच जीने वाला जनसमूह है, फिर भी वे राष्ट्र कहलाते हैं। इस तरह की विविधता को स्वीकारते हुए समन्वय की आशा के बीच माखनलाल जी चतुर्वेदी राष्ट्र की संकल्पना करते हैं। विविधता की वृद्धि से राष्ट्र कमजोर नहीं होता, बलवान होता है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमारी विविधता को मतभेदों से परिणत ना कर सकें। चतुर्वेदी जी राज्य के निवासियों की उस वचन अथवा कृति को राष्ट्र मानते हैं जो उनके जीवन से निकली है, उन्मेष बनकर आती है और इतिहास बनकर ठहर जाती है। इस प्रकार आधुनिक संदर्भों में राष्ट्र एक व्यापक वृहत और चेतनाशील संकल्पना है जिसमें निश्चित भूमि, निश्चित जनसंख्या, संस्कृति, सभ्यता, सार्वभौमत्व, इतिहास, परंपराएं, धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य इत्यादि में समानता अथवा समन्वय, विविधता में एकात्मकता की भाव आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आकर राष्ट्र पहाड़, पत्थर, पेड़ पौधों से संपृक्त भूमि और उसकी सीमा रेखाओं के अंदर खींचा गया मानचित्र नहीं रह जाता, वह एक शक्ति बन जाती है, चेतना से संपृक्त भावना बन जाती है जो मानवीय भावनाओं से संबद्ध होने के कारण परिभाषा सी हो जाती है। उसकी परिभाषा का प्रयास मानवीय मन के संस्कारक्षम अंतःकरण की मर्यादा को तय करना होगा, जैसे कि मानचित्र को सीमा रेखाओं से किया जाता है। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय शब्द बनता है, यह एक विशेषण है। राष्ट्र पुरुषवाचक संज्ञा का, जिसका अर्थ है राष्ट्र का, राष्ट्र की अथवा राष्ट्र संबंधी। परंतु राष्ट्र का यह राष्ट्रीय रूप संस्कृत व्याकरण में असिद्ध माना गया है, जबकि भाषा में प्रयुक्त होता आ रहा है। अंग्रेजी में भी राष्ट्रीय का बिलोंगिंग टू ए किंगडम अर्थात राष्ट्र का राष्ट्र संबंधी ऐसा ही अर्थ लिखा जाता है। राष्ट्र पुरुषवाचक संज्ञा जिस तरह राष्ट्रीय विशेषण में बदलती है, उसी तरह राष्ट्रीय विशेषण को पुनः संज्ञा रूपक दिया जाता है और वह स्त्रीवाचक राष्ट्रीयता की तरह बनता है, जिसका अर्थ है किसी राष्ट्र के विशेष गुण, अपने देश या राष्ट्र का उत्कट प्रेम। अंग्रेजी में नेशनैलिटी कहते हैं, जिसमें राष्ट्राभिमान या राष्ट्र प्रेम का भाव परिलक्षित होता है। यह राष्ट्रप्रेम या राष्ट्राभिमान भाव रूप धारण करता है। जब राष्ट्रीय की भावना इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में इसे नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रभक्ति भी कहते हैं, जिसमें पैट्रियोटिक फीलिंग ऑफ एफर्ट्स, स्ट्रॉन्ग डिवोशन टू वंस ओन कंट्री इत्यादि होता है। इस तरह राष्ट्र शब्द राष्ट्रीय से गुजरता हुआ राष्ट्रीयता की भाव भूमि तक पहुंचता है, जहां वह भाववाचक संज्ञा का रूप धारण करता है। निराकार भावात्मकता वह शक्ति राष्ट्र नामक केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार राष्ट्रीयता एक निर्मल और पुनीत भाव है जिसमें देशानुराग सदैव प्राणवान रहता है। राष्ट्र का निर्माण करने वाली, उत्थान तथा उत्कर्ष करने वाली पुनीत भावना का नाम राष्ट्रीयता है। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय भावना जब तक राष्ट्रीय चेतना नहीं बनती, तब तक इसमें संपूर्णता परिलक्षित नहीं होती। भावना में श्रद्धा, निष्ठा तथा भक्ति तो होती है, परंतु कभी कभी ज्ञान, विवेक तथा जागृति का अभाव सा रहता है। चेतना, जिसका अर्थ होता है चैतन्य, ज्ञान, होश, बुद्धि, मनोवृत्ति, ज्ञानात्मक मनोवृत्ति इत्यादि। अतः भावना का एक और अगला पड़ाव सामने आता है चेतना के रूप में, जिसमें श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ ज्ञान, विवेक और जागृति का समन्वय स्थापित हो जाता है। राष्ट्रीय चेतना का विषय है जो मानव जाति की मूलभूत अनुभूतियों में से एक है। राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना का आगामी चैतन्य यात्रा का नाम ही राष्ट्रीय चेतना है, क्योंकि चिति अर्थात चैतन्य ही राष्ट्रीयता की द्योतक है। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उस राष्ट्र की चिति अर्थात चेतना शक्ति पर प्रतिष्ठित होता है। इसी चिति के उत्थान और पतन के साथ राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। जिस तरह व्यक्ति की आत्मा होती है, उसी तरह राष्ट्र की भी आत्मा होती है, जिसको शास्त्रविदों ने चिति कहा है, जिसको अन्य शब्दों में राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है। यह मानव की एक मूलभूत आंतरिक चेतना है, एक प्रकार की साहचर्य भावना है, जिसका विकास एकानुभूति रखने वाले जन समुदाय में होता रहता है। राष्ट्र के संबंध में साहचर्य भावों के साथ प्रस्फुटित होने वाली यह चेतना ही राष्ट्रीय चेतना बनती है। अतः यह राष्ट्रीयता का सही, संपूर्ण और सुयोग्य स्वरूप है, परंतु सतही तौर पर भाषा में इसके लिए राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयत्व, राष्ट्रीय भावना और आधुनिक युग में विशेषत्व पश्चिम के संदर्भ में तो इसके लिए राष्ट्रवाद शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना शब्द में सही और संपूर्ण भावार्थ छिपा हुआ है। जब से राष्ट्र का निर्माण हुआ है, राष्ट्रीय चेतना भी उत्पन्न हुई, अपितु राष्ट्र से भी पहले राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई जिसके सहारे बाद में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जाता है। पहले राष्ट्रित्व अर्थात राष्ट्रीय चेतना प्लस राज्य राष्ट्र बनाता है। राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र की जननी है, उसका धारणा शक्ति है, वह मानव मन में प्रादुर्भाव एक अत्यंत प्रबल भावना है जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष करती रहती है, जिनमें हर मोर्चे पर आगे और हो बढ़ने का भाव बलवत्तर बना रहता है। पीछे मुड़ने या ठहराव राष्ट्रीय चेतना की नियति कभी नहीं रही है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि की वंदना में जो कहा गया है, मनो मात्रे पृथ्वे नमो नमो पृथ्वे माता भूमि को वंदना करते हुए का यह भाव राष्ट्रीय चेतना है। मातृभूमि पुत्रो एवं पृथिव्याम की दृढ़ प्रतीति राष्ट्रीयता की नींव है। भूमि को माता और अपने आप को उसका पुत्र मानने की सामूहिक चेतना इसमें स्पष्ट परिलक्षित होती है। वेदों में इस तरह के अनेक वचन हैं जिसमें उच्चतर राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता उत्तरोत्तर विकसित होने वाली चेतना है, अतः राष्ट्रीय चेतना का आधुनिक स्वरूप उसके प्राचीन रूप से भिन्न हो जाता है। इन दिनों राष्ट्र पूर्णता आज के अर्थ में ना हो, कुछ विस्तृत या सीमित हो, जो भी हो, पर इतना स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त राष्ट्र शब्द केवल जनपद राज्य या देश का पर्याय नहीं है, उसका विशेष अर्थ है और वह अर्थ है आज के राष्ट्र का प्रस्थान बिंदु है। इसी तरह राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो वचन तत्कालीन ग्रंथों में मिलते हैं वे भी आज की राष्ट्रीय चेतना का प्रस्थान बिंदु है। वह राष्ट्रीयता व राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लेती हैं, जिसमें एक मानव समाज की स्वयं के राजकीय संगठन की तीव्र कामना नहीं निहित होती है, यह भी राष्ट्रीयता का प्रगतिशील रूप है। यह एक प्रकार की राष्ट्रीय चेतना जो व्यक्ति के में स्पंदित रहती है, जिसके मूल में देशभक्ति बीज रूप में सुरक्षित होता है। आधुनिक संदर्भों में नए अर्थ में राष्ट्रीयता राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रवादी भावना का स्वरूप मुखर होता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना पर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि का गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीयता मूलतः एक भावना है जिसमें दो तरह की सत्ताओं के प्रति निष्ठा का समावेश किया गया है, पहला आंतरिक सत्ता के प्रति निष्ठा और दूसरा बाह्य सत्ता के प्रति निष्ठा। आंतरिक सत्ता के अंतर्गत राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चेतना, तीसरा ऐतिहासिक परंपराओं के प्रति सजगता, चौथा सामाजिक सामूहिक चेतना, पांचवा राजनीतिक चेतना, छठवां साहित्यिक चेतना, सातवां भाषागत चेतना इत्यादि चेतनाओं का समावेश रहता है। बाह्य सत्ता के अंतर्गत पहला भौगोलिक सीमा अथवा भूमि, दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य इत्यादि को महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रीय चेतना अपनी सशक्त स्थिति में दोनों निष्ठाओं के साथ होती है, अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत भौगोलिक सीमाओं के प्रति सजगता अथवा भूमि प्रेम, अपनी भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण, राष्ट्रीय राष्ट्र के सांस्कृतिक धर्म दर्शन अध्यात्म साहित्य भाषा तथा ऐतिहासिक परंपराओं के प्रति प्रेम भावना आदि का तत्व रूप में समावेश होता रहता है। इनके अतिरिक्त आधुनिक राष्ट्रीय चेतना की संकल्पना में जिन सहायक तत्वों का समावेश मिलता है उनमें देश की स्वतंत्रता की अभिलाषा और उसके लिए आवश्यक बलिदान त्याग एवं संपूर्ण की भावना और अनंत में विश्व बंधुत्वता की विशाल मनोकामना आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः जब लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी तभी क्षेत्रवादी चेतना का अंत हो सकेगा। क्षेत्रीय विकास की असमानता। नंबर चार, राष्ट्रीय एकता की कुंजी क्षेत्रीय विकास की समानता है। क्षेत्रीय विकास की विषमताएं विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में दूरी और विद्वेष बढ़ाती है। कभी कभी विद्वेष इतना बढ़ जाता है कि यह उग्र रूप धारण कर लेता है। झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल का सृजन विकास की असमानता के कारण ही हुआ, अतः क्षेत्रीय विकास की असमानता को बढ़ाने वाले कारणों को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कृषि की उन्नति, उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी, पूंजीवाद का अंत, उद्योगों का विकास, नए नए उद्योगों की स्थापना, गांवों का विकास, जनजातियों और आदिम जातियों के कल्याण की विशेष व्यवस्था आदि उपायों को अपनाया जा सकता है। यद्यपि संविधान और सरकारी योजनाओं में इस संबंध में विस्तृत घोषणाएं हैं, किंतु उन्हें सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका। फिर भी इस दिशा में हुई प्रगति बहुत अधिक सराहनीय नहीं है। सभी राज्य में विकास की गति एक समान नहीं है। कहीं बहुत अधिक विकास हुआ तो कहीं बहुत कम विकास की असमानता यदि क्षेत्रवाद को उभारता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। पांचवा, आर्थिक और औद्योगिक विकास की समानता। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था किसी देश की समृद्धता का परिचायक है। निसंदेह किसी देश की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति उस देश की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों तथा उस देश की राजनीतिक, ऐतिहासिक परंपराओं एवं बदलती हुई परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित आदि तत्वों से प्रभावित और निर्धारित होती है। भारत की आर्थिक और औद्योगिक नीति का निर्माण एवं विकास भी इन्हीं तत्वों से प्रभावित रहा है। फिर भी कहीं कहीं यह असंतोष का कारण बना रहा। उस असंतोष का एक बड़ा कारण यह भी है कि सभी प्रदेशों, राज्यों एवं क्षेत्रों के आर्थिक विकास का समस्तरीय ध्यान नहीं रखा गया। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो राज्य और क्षेत्र पहले से साधन संपन्न रहे हैं उन्हें अधिक आर्थिक व औद्योगिक सुविधा और सुयोग मिले हैं। जो क्षेत्र पहले से पिछड़े रहे हैं उन्हें कम आर्थिक और औद्योगिक सुविधा और सुयोग मिले हैं। परिणामतः आर्थिक और औद्योगिक विकास में भेदभाव और विषमता के कारण देश समृद्ध और असमृद्ध ऐसे दो भागों में विभाजित हो गया। एक वह भारत जो लाखों करोड़ों पिछड़े ग्रामवासियों का है, जिनके लिए जीवन एक भयंकर अभिशाप है, और दूसरा वह भारत जिसमें कई सौ नगर और महानगर हैं जो विकास की नखरिस्तान कहे जा सकते हैं। महाराष्ट्र का विकास में पंजाब के बाद दूसरा स्थान है, पर यदि इसमें से बृहत्तर बंबई को निकाल दें तो सारा राज्य अन्य राज्यों की ही भांति पिछड़ा माना जा सकता है। यह सच है कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के इस वैषम्य ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। अतः क्षेत्रवाद का अंत करने के लिए आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करते समय क्षेत्रानुसार संतुलन बनाए रखने की ओर भरपूर ध्यान देना चाहिए। यदि यह संतुलन किसी तरह से गड्ढमड्ड होता है तब एक क्षेत्र को अन्य क्षेत्र की अपेक्षा विकसित होने के लिए अधिक अवसर मिलता है। परिणामतः क्षेत्रवादी राजनीति को सिर उठाने की गुंजाइश निकल आती है। अतः आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं को हाथ में लेते समय क्षेत्रवादी दर्शन पर सम्यक रूप से विचार विमर्श कर लेना बहुत ही अर्थवान दिखाई देता है। छठा, क्षेत्रवाद के उन्मूलन के लिए क्षेत्र निरपेक्ष और तर्कसंगत सार्वभौमिक बौद्धिक चेतना का निर्माण। चूंकि क्षेत्रवाद का जन्म संकीर्ण विचार दर्शन की कोख में होता है, अतः इसके समापन के लिए सार्वभौमिक जीवन दर्शन के सिद्धांत की सुनिश्चित मान्यताओं एवं मूल्यों का प्रसार प्रचार करना होगा। ये मान्यताएँ व मूल्य भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। क्षेत्र निरपेक्षता आधुनिक सार्वभौमिकरण के मानकों को स्वीकार करने के लिए एक प्रमुख उपकरण है। यह सार्वभौमिकीकरण के जीवन के मूल्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिस पर सार्वभौमिकीकरण का नारा देने वाले अधुनातन विद्वान मनीषियों ने विशेष बल दिया है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार दर्शन भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार दर्शन है। इस विचार दर्शन के आधार पर ही क्षेत्रवादी भावनाओं, अलगाववादी भावनाओं की धारा से रोका जा सकता है। अलगाववादी विरोधिनी शक्ति को कुचला जा सकता है। सार्वभौमिकीकरण का सिद्धांत ही भारत में क्षेत्र निरपेक्षता की भावना को विकसित विकास हेतु समुचित व उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकेगा। सार्वभौमिक दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो लोक जीवन के पत्थरों को पुष्प बना सकती है और छेद कर डोरा बनकर उनके कोटि कोटि मिलन का योग साध सकती है। क्षेत्रवादी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। सत्वा, क्षेत्रवाद का अंत करने के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषा राष्ट्रीय और सजातीय आधार पर राजनीतिक करने वाले राजनीतिक दलों का सफाया कर दिया जाए। ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर देना चाहिए जो अपने नीतियां तथा व्यवहार से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। आठवां, जनमत
निर्माण तथा संप्रेषण के अभिकरणों द्वारा नकारात्मकता, क्षेत्रवादी विचारों के प्रसारण पर प्रतिबंध। दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य संचार माध्यमों को यह निर्देश देना परमावश्यक है कि वे ऐसे समाचारों तथा विचारों को प्रसारित न करें जिनसे क्षेत्रवादी विद्वेष फैलने का संभावना हो। नौवां, राष्ट्र भाषा का उत्थान, प्रचार एवं प्रसार। किसी देश की अखंडता, उसका विराट अस्तित्व उसकी राष्ट्रवाणी व राष्ट्रभाषा पर आधारित रहती है। इसलिए हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, जिसमें हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित हो। महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 1941 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियों को उद्धृत करने से हम उनको अपने आप से रोक नहीं सकते। चतुर्वेदी जी अपने अभिभाषण में कहते हैं, जब नेत्रों की भाषा होती है, हृदय की भाषा होती है, बुद्धि की भाषा होती है, आवश्यकताओं की भाषा होती है, और मुस्कुराहट, उदासीनता, मुहावरे, कहावतें, उक्ति, ताने, उत्साह, प्रतारण, मौन और वाणी मानव हृदय को व्यक्त करने का ही काम करते रहते हैं, तब मानवों की मातृभूमि, उनके देश की कोई बोली नहीं या संभव नहीं। उन्होंने आगे यह कहा कि राष्ट्रभाषा आज और कल की गढ़ी हुई नहीं है, हिंदी प्रचारकता से नहीं बढ़ी। भारतीय संस्कृति के अमर स्रोत के सम्मेलन में की वाणी बनकर ही हिंदी बढ़ी है, और भविष्य में भी उसका वही काम होगा तो उसका राष्ट्रवाणी बनकर बढ़ना सार्थक हो। वैदिक युग के ऋषियों ने एक वाणी गढ़ी थी, किंतु उनका भगवान क्षीर सागर में भगवती लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर विलास करने लगा। तब ऋषियों के काम को आगे बढ़ाने के लिए संत उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवान को क्षीर सागर से बाहर निकालकर भक्तों में भक्त, गरीबों में गरीब, मानवों में मानव, कष्टभोगियों में कष्टभोगी बन जाने के लिए बाध्य किया। संत योग के भगवान नामदेव की टूटी झोपड़ी बांधते, दामाजी की अनाज की कमी पूरी करते हुए क्या क्या ना करते। लोक हृदय का नारायण बनने के अपने मिशन में संत दक्षिण के उत्तर और उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम आते जाते रहते। छत्रपति शिवाजी की शक्तियों ने और पेशवाओं की सेना ने नर्मदा लांघकर कुछ थोड़ी ही दूरी पर उत्तर हिंदुस्तान की यात्रा की होगी, किंतु संतों की यह वाणी यात्रा दक्षिण के तीर्थों से उत्तर के तीर्थों की ओर और उत्तर के तीर्थों से दक्षिण के तीर्थों की ओर कितनी ही बार कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, जमुना और गंगा लांघती रही। उस समय भाषा का निर्माण, भाषा का संगोपन, भाषा का लेन देन उन संतों के द्वारा निर्धारित होता रहता था। उन्हीं दिनों हिंदी का निर्माण हुआ। इसके बचपन के दिन संतों की जीव की गोद में दुलार से बीते हैं। संतों की कलम पर खेल के इसने तारुण्य पाया, और संतों की अखिल भारतीय यात्राओं में अखंड भारत की वाणी बनने को इसे अवसर प्राप्त हुआ। अतः लोक भाषा राष्ट्रवाणी के उन्नयन के लिए संत की ही आवश्यकता होती है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। इसलिए रघुपति राघव राजा राम की धुन लगाते संत गांधी के ही प्रयत्नों से राष्ट्रवाणी ने पुनः प्राण प्रतिष्ठा, राष्ट्र निश्चय और संचालन पाया। सन 1943 में 33वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण देते हुए राष्ट्रवादी चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा का संबंध प्रांतीय भाषाओं से है, किंतु यह कल्पना उचित ना होगी कि प्रांतीय भाषाएं राज हैं और राष्ट्रभाषा साम्राज्य। प्रांतीय भाषाओं की ज्ञानहीनता हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्रदान नहीं किए हुए हैं। यदि कुछ प्रांतीय भाषाओं को यह गर्व हो तो बेदाग रहे कि इनमें हिंदी से अधिक श्रेष्ठ साहित्य है। हम तो राष्ट्रभाषा की उपासना समाप्त समस्त देश को साथ रखकर इसलिए करते हैं कि वह देश की अन्य सब भाषाओं की अपेक्षा अधिक सरलता से देश के अधिकांश भाग में समझी और सीखी जा सकती है। हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। संतवाड़ी होने के नाते देश की संस्कृति को पूरब और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण में लौट कर वहन करते करते हिंदी ने स्वयं अपने को शताब्दियों में राष्ट्रभाषा बनाया। हिंदी का यह भाग्य रहा कि संतों ने उसे सदा वहन किया, जनता ने उसे सदा ग्रहण किया और सिंहासनों ने उसे कभी सहारा नहीं दिया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के ये उद्गार स्पष्ट करते हैं कि देश में जैसे जैसे हिंदी भाषा भाषियों का बाहुल्य होता जाएगा, क्षेत्रीयता और क्षेत्रवादी भावनाएं हल्की हो जाएंगी, विध्वंस हो जाएंगी, अलगाववादी प्रवृत्तियां स्वतः विलुप्त हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। जिस तरह सूरज और चांद का प्रकाश स्वदेशी और विदेशी नहीं होता, उसी तरह हिंदी भाषा भाषी लोग स्वदेशी और विदेशी नहीं हुआ करते, दक्षिण और उत्तर तथा पूर्व और पश्चिम के नहीं हुआ करते। समाप्त।